زمانوں کی امنگ، باب نمبر 29، سبت۔ تخلیق کے وقت سے سبت کو مقدس ٹھہرایا گیا اور یہ انسان کے لیے مخصوص کیا گیا۔ اس کا منبع ہم ایوب کی کتاب میں دیکھتے ہیں، جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے۔ ایوب 7:38۔ چونکہ زمین آسمان کے ساتھ ہم آہنگ تھی، اس لائے آسمان کو امن اور سلامتی نے پناہ دے رکھی تھی، اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے۔ پیدائش 13:1۔ اور اپنے کام کی تکمیل کی خوشی میں آرام فرمایا۔ چونکہ خدا وند، خدا نے سبت کے دن آرام فرمایا، اس لیے خدا نے ساتویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ پیدائش 3:2۔ خدا نے سبت کے دن کو دوسرے دنوں سے علیحدہ کیا تاکہ پاک مانا جائے۔ خدا نے اسے آدم کو دیا تاکہ اس دن آرام کرے۔ یہ تخلیق کی یاد میں خدا نے قائم کیا۔ یہی خدا کی قدرت اور محبت کا نشان ٹھہرا، چنانچہ لکھا ہے، اس نے اپنے عجائب کی یادگار قائم کی ہے، خداوند رحیم اور کریم ہے۔ زبور 4:111۔ کیونکہ اس کی ان دیکھی صفتیں، یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت، دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعہ سے معلوم ہر کر صاف نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں۔ رومیو 20:1۔ سب چیزیں خدا کے بیٹے نے تخلیق کی۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، تمام چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ یوحنا 1:1-3۔ چونکہ سبت تخلیق کی یادگاری میں ہے، اس لائے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح کی قدرت اور محبت کی بخشش ہے جو ہم انسانوں کو اس نے عطا کر رکھی ہے۔ سبت ہماری توجہ فطرت کی چیزوں کی طرف مبذول کراتا ہے، یوں ہماری رفاقت کائنات کے خالق سے ہو جاتی ہے۔ پرندوں کی راگنیوں میں، درختوں کی سرسراہٹ اور سمندر کی موسیقی میں ابھی تک ہم خداون جو ان سب کا خالق ہے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم ان کے ذریعے ابھی تک خدا کی آواز سن سکتے ہیں جو ٹھنڈے وقت میں آدم سے ہم کلام ہوتا تھا۔ جب ہم اس کی قدرت کو فطرت میں دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں عجیب تسلی ملتی ہے، کیونکہ جس کے ذریعے ہر ایک چیز وجود میں آئی، انہیں چیزوں کے ذریعے سے وہ ہماری روح سے کلام کرتا ہے۔ اس لیے کہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے نور چمکے، اور وہی ہمارے دلوں میں چمکاتا کہ خدا کے جلال کی پہچان کو نور یسوع مسیح کے چہرے سے جلواگر ہو۔ 2 کرنتھیوں 6:4۔ کیونکہ اے خداوند، تو نے مجھے اپنے کام سے خوش کیا، میں تیری صنعت کاری کے سبب سے شادیانہ بجاؤں گا۔ اے خداوند، تیری صنعتیں کیسی بڑی ہیں، تیرے خیال بہت عمیق ہیں۔ زبور 4:92-5۔
روح القدس نے یسعیاہ نبی کے وسیلہ فرمایا، پس تم خدا کو کس سے تشیع دو گے، اور کون سی چیز اس سے مشابہ ٹھہراؤ گے؟ تراشی ہوئی مورت، کاریگر نے اسے ڈھالا، اور سنار اس پر سونا مڑتا ہے، اور اس کے لیے چاندی کی زنجیریں بناتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے؟ کیا تم نے نہیں سنا؟ کیا یہ بات ابتدا ہی سے تم کو بتائی نہیں گئی؟ کیا تم بنائی عالم سے نہیں سمجھے؟ وہ محیط زمین پر بیٹھا ہے، اور اس کے باشندے ٹڈوں کی مانند ہیں۔ وہ آسمان کو پردہ کی مانند تانتا ہے، اور اس کو سکونت کے لیے خیمہ کی مانند پھیلاتا ہے۔ وہ قدوس فرماتا ہے، تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے، اور میں کس چیز سے مشابہ ہوں گا؟ اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ اور دیکھو کہ ان سب کا خالق کون ہے۔ وہی جو ان کے لشکر کو شمار کر کے نکالتا ہے، اور ان سب کو نام بنام بلاتا ہے۔ اس کی قدرت کی عظمت اور اس کے بازو کی توانائی کے سبب ایک بھی غیر حاضر نہیں رہتا۔ یسعیاہ 18:40-26۔ بس اے یعقوب، تو کیوں یوں کہتا ہے کہ میری راہ خداوند سے پوشیدہ ہے، اور میری عدالت میرے خدا سے گزر گئی؟ کیا تو نہیں جانتا؟ کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند ابدی و تمام زمین کا خالق، تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا؟ वो थके हुए को और बख्शता है और नातवां की तवानाई को ज्यादा करता है। यसैया 29:27। तो मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हरासा ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा, और मैं अपनी सदाकत के दहने हाथ से तुझे संभालूंगा। यसैया 10:41। ऐ इंतहाई जमीन के सब रहने वालों, तुम मेरे तरफ मुतवज्जे हो और नजात पाओ, क्योंकि मैं खुदा हूं और मेरे सिवा कोई नहीं। यसैया 22:45।
मेरे सब्तों को मुकद्दस जानूं, कि वो मेरे और तुम्हारे दरमियान निशान हों, ताकि तुम जानूं कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। हिजकियेल 20:20। कोहे सीना पर दी जाने वाली शरीयत, उसमें सबत भी दिया गया, मगर याद रहे कि बनी इसराइल कोहे सीना पहुंचने से पहले ही सबत के आराम के बारे जानते थे, बल्कि सफर के दौरान भी वो सबत मनाते रहे थे। और जब कोई सबत की बेहुर्मती करता तो खुदा उसको ये कहकर तंबीह करता, तुम लोग कब तक मरिए हुक्मों और शरीयत के मानने से इनकार करते रहोगे। खुरूज 28:16। सबत महज बनी इसराइल के लिए ही ना था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। बागे अदन में सबत अबुल बशर को दिया गया, और शरीयत के बाकी अहकाम की तरह यह भी ला तब्दील था। शरीयत के बारे यीशु ने फरमाया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तौरेत से हरगिज न टलेगा। मत्ती 18:5। सबत के बारे चौथा हुक्म उसी शरीयत का हिस्सा है, लिहाजा जब तक जमीन व आसमान कायम है, सबत जो खुदा की मोहब्बत और कुदरत का निशान है कायम रहेगा। और जब अदन दोबारा जमीन पर कायम होगा तो तमाम रूए जमीन खुदावंद के पाक दिन पर आराम करेगी। खुदावंद फरमाता है, जिस तरह नया आसमान और नई जमीन जो मैं बनाऊंगा मेरे हुजूर कायम रहेंगे, उसी तरह तुम्हारी नस्ल और तुम्हारा नाम बाकी रहेगा। और यूं होगा कि एक नए चांद से दूसरे तक और एक सबत से दूसरे तक हर फर्द बशर इबादत के लिए मेरे हुजूर आएगा। यसैया 22:66-23। सबत के अलावा यहूदियों को इतनी इम्तियाजी हैसियत बख्शने के लिए कोई और त्यौहार ना दिया गया। सबत उन्हें दूसरी कौमों में इम्तियाज बख्शता। उस दिन उन्हें अपने खुदावन की इबादत करना थी। यूं वो बुत परस्ती से दूर रहते और जिंदा खुदा की रफाकत हासिल करते। मगर लाजिम है कि खुदा के दिन को पाक मानने के लिए इंसान पाक हो। ये भी लाजिम है कि स्नान ईमान के जरिए मसीह येसु की रास्तबाजी के वारिस हों। याद करके तो सबत का दिन पाक मानना, तुम मेरे लिए पाक आदमी हो। खुरूज 8:20। 13:22।
इसी तरह खुदा के बंदों को बुतपरस्त कौमों के दरमियान तरह इम्तियाज हासिल हो सकता था। जब यहूदी ईमान के जरिए मसीह की रास्तबाजी अपनाने में नाकाम हो गए तो सबत की अहमियत भी खो गई। इबलीस तो अपनी बर्तरी चाहता था और उसका मंशा था कि लोगों को मसीह से दूर धकेल दे। उसने सबत को बदलने का अमल शुरू कर दिया। चुनाचे यहूदियों ने इबलीस का साथ दिया और सबत को मुख्तलिफ मुतालिबात और इंसान के बनाए हुए रसूम से बोझल कर दिया। सबत जो खुदा का मुअज्जम और राहत का दिन था, यहूदियों की खुदगर्जी के सबत बोझ बनकर रह गया। गो यहूदियों ने सबत के बारे अपनी मनमानी करके कवानीन वजा कर रखे थे, मगर अवाम ख्याल करते थे कि ये खुदा की तरफ से हैं और उनके लिए उनको मानना मुश्किल ही नहीं न मुमकिन हो गया था। यूं लोग खुदा को जाबिर और खुदगरज जैसे अलकाब से नवाजते और सबत से नफरत करने लगे। एक सबत को मसीह येसु और उसके शागिर्द खेतों में से होकर जा रहे थे। शागिर्द बालें तोड़ तोड़कर और मिल मिलकर खाने लगे। अगर वो यही अमल किसी और दिन करते तो काबिले माफी होता, मगर सबत के दिन ये काम करना सबत को तोड़ने के मुतरादिफ ख्याल किया जाता था। बालें तोड़ना और उनको मिलना यहूदियों के नज़दीक ऐसा ही था जैसे फसल को काटना और गाहना। वो ऐसा फेल सबत के दिन हरगिज बर्दाश्त न कर सकते थे। शरा के मौलिमों की नज़र में मसीह के शागिर्दों ने दो चंद कसूर किया,
लिहाजा जासूसों ने फौरन उससे शिकायत की कि तेरे शागिर्द सबत के दिन क्यों ऐसा काम करते हैं जो रवा नहीं। बैत हसदा के मकाम पर येसू ने जब एक मरीज को सबत के दिन शिफा दी तो उस वक्त भी उस पर एतराज किया गया, मगर उसने खुद को खुदा का फर्जंद करार देते हुए उनको जवाब दिया कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी उसी के नक्श कदम पर चलता हूं। अब उसके शागिर्दों पर भी वही इल्जाम था कि वो सबत की बेहुर्मती करते हैं। यहूदी मुअल्लिमों को फखर था कि वो इल्हामी नुस्खों की तालीम से अच्छी तरह वाकिफ हैं, मगर यीशु ने उन्हें झड़कते हुए कहा, क्या तुमने ये भी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उसने क्या किया? वो क्यों कर खुदावंद के घर में गया और नजर की रोटियां लेकर खाईं, जिनको खाना काहनों के सिवा और किसी को रवा नहीं, और अपने साथियों को भी दें? लूका 3:6-4। और उसने उनसे कहा, सबत आदमी के लिए बना है, न आदमी सबत के लिए। बस इब्ने आदम सबत का भी मालिक है। मरकुस 27:2-28। तुमने तौरेत में नहीं पढ़ा कि काहिन सबत के दिन हैकल में सबत की बेहुर्मती करते हैं और बेकसूर रहते हैं? मैं तुमसे कहता हूं कि यहां वो है जो हैकल से भी बड़ा है। मत्ती 5:12-6। अगर दाऊद के लिए ये रवा था कि नजर की रोटियां लेकर खाए और अपने साथियों को भी दे ताकि सैर हों, तो ये भी रवा है कि सबत के दिन शागिर्द बालें तोड़कर और मिलकर खाएं ताकि अपनी भूख मिटाएं और तसल्ली पजीर हों। और इसी तरह काहिन हैकल में बड़ी खिदमत अंजाम देते थे। आम कारोबार अगर सबत के दिन किया जाए तो गुनाह गिना जाता था, मगर चूंकि काहनों की खिदमत खुदा के लिए हुआ करती थी इसलिए वो बेगुनाह ठहरते थे, क्योंकि काहन वही रसूम अदा करते थे जो यसू की निजात बख्श कुवत की तरफ इशारा करती थी, और उनकी खिदमत सबत की रूह से हम आहन थी। मगर अब तो यसू मसीह खुद आ चुका था। शागिर्द यसू की खिदमत अंजाम दे रहे थे और खुदा के काम की बढ़ती के लिए जो कुछ जरूरी है उसे सबत के दिन करना रवा है। यसू मसीह अपने शागिर्दों और दुश्मनों दोनों को तालीम दे रहा था कि खुदा की खिदमत को अवलियत हासिल होनी चाहिए, और इंसान की निजात ही खुदा का पहला काम है। लिहाजा इंसान की निजात के लिए जो कुछ दरकार है अगर उसे सबत के दिन किया जाए तो ये रवा है। अलावाजी यसू ने एलानिया कहा कि इब्ने आदम सबत का भी मालिक है। इससे दुश्मनों की आंखें खुल गई होंगी। यसू ने उन्हें कहा, अगर तुम इसके मानी जानते कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं तो बेकसूरवार ना ठहराते। मत्ती 7:12। एक दफा फिर यसू ने उन पर हकायक आश्कारा किए कि कुर्बानियां बजाते खुद कोई अहमियत ना रखती थीं, बल्कि महज वसीला थीं जिनका काम इंसान की तवज्जो निजात दहिंदा की तरफ मबजूल कराना और उन्हें खुदा के कदमों में लाना था। मोहब्बत की खिदमत खुदावंद को पसंद आती है। जिस खिदमत में मोहब्बत ना हो उससे खुदावंद की नफरत है। सबत के बारे भी यही है। इसका मकसद ये था कि बनी नौ इंसान खुदा की हुजूरी में आए, लेकिन जब जहन मुख्तलिफ रसूम में उलझ जाते तो सबत का मतलब मफकूद हो जाता है। एक और सबत के मौके पर जब यसू हैकल में दाखिल हुआ उसने वहां एक आदमी को देखा जिसका हाथ सूखा हुआ था। फरीसी उसकी ताक में थे कि देखें ये क्या करता है। यसू मसीह बखूबी जानता था कि अगर वो सबत के दिन उसे शिफा देगा तो फरीसी उसे गुनाहगार करार दे देंगे, मगर उसने उनकी रिवायात की परवाह किए बगैर उस शख्स को जिसका हाथ सूखा हुआ था हुक्म दिया कि अपना हाथ आगे बढ़ा और फरीसियों से पूछा, सबत के दिन नेकी करना रवा है या बदी, जान बचाना या कत्ल करना? वो चुप रह गए। उसने उनकी सख्त दिली के सबब से गमगीन होकर और चारों तरफ उन पर गुस्सा से नजर करके उस आदमी से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ा दिया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। मरकुस 4:3-5। और जब यसू से ये सवाल पूछा गया कि आया सबत के दिन शिफा देना रवा है, तो उसके जवाब में कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भीड़ हो और सबत के दिन गढ़े में गिर जाए तो वो उसे पकड़कर ना निकाले? बस आदमी की कद्र तो भीड़ से बहुत ही ज्यादा है, इसलिए सबत के दिन नेकी करना रवा है। मत्ती 10:12 12। जासूस भीड़ की मौजूदगी में उसे जवाब नहीं देना चाहते थे, मुबादा किसी बड़ी मुश्किल में पड़ जाए। वो जानते थे कि उसने सच्चाई बयान की है, मगर उनके नजदीक अगर कोई दुखी शख्स सबत के दिन दुख उठाता है तो उसे दुख उठाने दो, मगर रिवायतों को किसी हालत में भी बातिल ना करो। मगर जानवर को जरूर गढ़े से निकालो ताकि माली नुकसान ना हो। दूसरे लफ्जों में, उनकी
नजर में हैवान की कद्र इंसान से ज्यादा थी जिसे खुदा ने अपनी शेबा पर बनाया। हर वो मजहब जो खुदा की मुतलकुल अनानी के खिलाफ जंग करता है, वो इंसान को उस जलाल से महरूम करता है जो तख्लीक के वक्त उसे हासिल हुआ था, और उस जलाल की बहाली यीशु मसीह में है। बनी नौ इंसान को मसीह ने अपने बेशकीमत खून से खरीद रखा है, और उसकी नजर में इंसान बेशकीमत है। मैं आदमी को खालिस सोने से बल्कि इंसान को उफेर के कंदन से भी कामयाब बनाऊंगा। यसैया 12:13। जब भी मसीह यीशु ने फरीसियों से पूछा, आया सबत के दिन नेकी करना रवा है या बदी, जान बचाना या कत्ल करना, असल में वो उनके इरादों को भाप गया था और उनके नापाक अज्म को उन पर आया किया था। वो न सिर्फ यीशु से नफरत करते थे बल्कि उसकी जान के खाहां थे, मगर मसीह खुद अवाम के लिए खुशी और जिंदगी मुहैया करना था। क्या सबत के दिन नफरत दिखाना रवा है या मोहब्बत? मसीह ने दरपर्दा उन्हें सबत के दिन मोहब्बत, रहम और खुशियां बांटने का दर्स दिया। सबत के दिन सूखे हाथ वाले शख्स को तंदुरुस्ती बख्शकर मसीह ने यहूदियों के दस्तूर की मलामत की और ऐलानिया बताया कि सबत के दिन नेकी करना रवा है। यूं मसीह ने सबत को इज्जत बख्शी। जो ये कहते हैं कि यीशु ने शरीयत को बातिल कर दिया, असल में वो भी यहूदियों के साथ मिलकर मसीह की मुखालफत करते हैं। यूं वो खुदावन मसीह की शहादत को ठकराते हैं जो उसने खुद दी। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरे मोहब्बत न कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत न कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत न कायम हूं। यूहन्ना 10:15। न मसीह खुदावन ने सबत को तोड़ा, न उसके शागिर्दों ने। मसीह यीशु शरीयत का चलता फिरता नुमाइंदा था। उसने अपनी जिंदगी में कभी भी शरीयत की अदूली न की। जो जासूस उसके पीछे लगे हुए थे, उसने उन सबको बबांग दहल कहा, तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? यूहन्ना 46:8। खुदावंद यीशु मसीह इसलिए ना आया कि शरीयत और बनियों के कलाम को मनसूख करे, क्योंकि उसने तो खुद शरीयत देने वाले खादिमों के जरिए ये कलाम किया था। नीज खुदा के कलाम की तमाम सच्चाइयां तो मसीह यीशु से सादिर हुई थीं, मगर इन सच्चाइयों को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा था। यीशु मसीह ने उन सच्चाइयों को सही मकाम दिया जहां से वो खुदा के जलाल और इंसान की निजात के लिए इस्तेमाल हो सकती थीं। यीशु मसीह ने कहा, सबत आदमी के लिए बना है, न कि आदमी सबत के लिए। खुदावन ने जो कुछ बनाया इंसान की बेहतरी के लिए बनाया। सब चीजें तुम्हारे वास्ते हैं, ताकि सबत से लोगों के सबब से फजल ज्यादा होकर खुदा के जलाल के लिए शुक्रगुजारी भी बढ़ाए। 2 कुरिन्थियों 15:4। सब चीजें तुम्हारी हैं, खा पोलिस हो खा पुलुस, खा कैफा खा दुनिया, खा जिंदगी खा मौत, खा हाल की चीजें खा मुस्तकबिल की, सब तुम्हारी हैं और तुम मसीह के हो और मसीह खुदा का है। 1 कुरिन्थियों 22:3-23।
10 अहकाम की शरीयत, जिसमें चौथा हुक्म सबत के बारे है। खुदा ने अपने लोगों को बतौर बख्शिश दिया। मूसा के जरिए खुदावंद हमें फरमाता है, खुदावंद ने हमको उन सब अहकाम पर अमल करने और हमेशा अपनी भलाई के लिए खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानने का हुक्म दिया है, ताकि वो हमको जिंदा रखे। इस्तस्ना 24:6। नीज जबूर नवीस के जरिए बनी इसराइल को पैगाम दिया गया, खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो, जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसके हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो। जबूर 2:104।
اور تمام لوگ جو سبت کو معظم جانتے ہیں ان کے لیے خداوند فرماتا ہے، وہ سب جو سبت کو حفظ کر کے اسے ناپاک نہ کریں اور میرے عہد پر قائم رہیں، میں ان کو بھی اپنے کوہ مقدس پر لاؤں گا اور اپنی عبادت گاہ میں ان کو شادمان کروں گا۔ یسعیاہ 56:6-7۔ اس لیے ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے۔ یہ کلام ہدایت اور اطمینان سے معمور ہے، کیونکہ سبت آدمی کے لیے بنایا گیا۔ یہ خداوند کا دن ہے جس کا مالک مسیح ہے، کیونکہ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں۔ یوحنا 3:1۔ چونکہ اس نے سب چیزوں کو تخلیق کیا، لہذا سبت بھی اس نے بنایا۔ اس نے ہی تخلیق کی یاد میں اسے مخصوص کیا۔ اس نے بنی اسرائیل سے فرمایا، میں نے اپنے سبت بھی ان کو دیے تاکہ وہ میرے اور ان کے درمیان نشان ہوں، تاکہ وہ جانے کہ میں خداون ان کا مقدس کرنے والا ہوں۔ حزقیل 12:20۔ چنانچہ سبت خداون یسوع کا وہ نشان ہے جو ہمیں مقدس ٹھہراتا ہے، اور سبت ان سب کے لیے ہے جن کو یسوع مقدس کرتا ہے۔ اسی لیے خداون فرماتا ہے، اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روک رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہوا، ور سبت کو راحت اور خداون کا مقدس اور معظم کہے اور اس کی تعظیم کرے، اپنا کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دست بردار رہے، تب تو خداون میں مسرور ہوگا اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا۔ یسعیاہ 13:58-14۔ وہ سب جو سبت کو یسوع مسیح کی تخلیقی اور نجات بخش قوت مانتے ہیں، ان کے لیے یہ خوشی و خرمی اور راحت کا سبب ہوگا۔